आकाशवाणी श्रीनगर है, शबीर उज जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान वजीर दाखिला ने सलामती एजेंसियों को मिशन मोड पर काम करने की दी हिदायत। इंतजामिया जम्मू कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने की वादाबंद। आवाम की आवाज प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तकरीबी सईद कल। नमाजी ईद के बड़े बड़े इज्तिमात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। और मुल्क में तीन नए फौजदारी कवानीन अगले महीने से होंगे नाफिज। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस सरबराह के अलावा दीगर सीनियर अफसरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर अजम नरेन्द्र मोदी की कयादत वाली सरकार इख्तराई जराये से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन करके एक मिसाल कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को मिशन मोड पर काम करने और मरबूत अंदाज में फौरी रद्द अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी की कयादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इरादा करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत हिंद की कोशिशों से वादी कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाकात में नुमाया कमी के साथ बड़े मुस्बत नतायज बरामद हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अमन कानून की सूरतहाल में बेहतरी वादी कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड आमद से जाहिर होती है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद और वोटिंग की रिकॉर्ड शरह के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज तीन महीने के अरसे के बाद फिर से आवाम की आवाज प्रोग्राम में लोगों से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने हालिया लोकसभा इंतखाबात में लोगों की बाहरी शिरकत पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों के बाद इस मरतबा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटिंग की शरह रिकॉर्ड की गई, जो इस बात की अक्कास है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत पर कितना यकीन रखते हैं।
जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मई जून में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों में आवाम की आस्था को व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। पिछले 35 वर्षों में सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बनाकर जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारत के चुनावी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। कश्मीर घाटी के तीन संसदीय क्षेत्रों में 50.86% मतदान हुआ था, जो भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिकों के विश्वास और आस्था को दर्शाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने लोकतंत्र को गले लगाया है और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फजा को दरहम बरहम करने के दर पे है और मिलिटेंटों को हथियार फराहम करके जम्मू कश्मीर में लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और फौज को भरपूर तआवुन फराहम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलाया कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने की वादाबंद है और बिना किसी भेदभाव के सरकार जम्मू कश्मीर के हर इलाके की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के देही और शहरी इलाकों में तरक्की का ग्राफ बुलंद हुआ है और नौजवान, खवातीन और किसान जम्मू कश्मीर की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। एलजी ने अपने प्रोग्राम के दौरान उन अशखास का भी नाम लिया जिनका जम्मू कश्मीर की तरक्की में खासा रोल रहा है। गांधरबल जिले की मलिक शगुफ्ता नबी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के पेशे से जुड़ी इस होनहार खातून ने जरूरतमंद खवातीन की मदद व इयानत करके उन्हें बाइख्तियार बनाया है।
गांधरबल की रहने वाली मलिक शगुफ्ता नबी लीगल प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से शगुफ्ता जरूरतमंद महिलाओं तक लीगल सपोर्ट पहुंचा रही। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, निस्वार्थ कर्मठता और फौलादी दृढ़ता द्वारा शगुफ्ता ने 200 से अधिक केसेस के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर महिलाओं को ताकतवर बनाया है। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, उत्तम सूझबूझ और निष्काम भाव से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों के लिए गांधरबल हमेशा उन्हें याद रखेगा।
आवाम की आवाज प्रोग्राम में जगह पाने पर जब हमने मलिक शगुफ्ता नबी से बात की तो अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने कुछ यूं किया।
मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा और मेरा मेन मुद्दा रहता है कि मैं डिस्ट्रेस्ड वुमन के लिए काम करूं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल अब्यूज होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या काफी ज्यादा प्रॉपर्टी के इश्यूज रहते हैं हमारी लेडीज के, उनके लिए मैं काम करती हूं ताकि उनके राइट्स वायलेट न हो या उनको अपने हकूक के बारे में पता चले। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक लेडी का कानून में भी हक रखा हुआ है और हमारे शरीयत में भी है, एक लेडी को अपने प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। इस चीज की थोड़ी बहुत हम अवेयरनेस करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी वायलेंस फ्री रहे और वुमेन को लगे कि वो एम्पावर्ड हैं। रियली
प्रोग्राम के दौरान एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पानी के जखायर को तहफ्फुज देने और लोगों की डिमांड के पेश नजर मरकजी हुकूमत की तरफ से एक वाटर मैनेजमेंट प्लान तरतीब दिया जा रहा है जिसके तहत लोगों को पीने के साफ पानी की वाफिर फराहमी के अलावा आबी जखायर को तहफ्फुज फराहम किया जाएगा। 21 जून को योगा दिवस के हवाले से मनोज सिन्हा ने कहा कि इस सिलसिले में श्रीनगर में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की जाएगी जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज खुद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिश का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुल्कों के मुसलमानों ने आज ईद उल अज़हा का मुतबरक और मुकद्दस त्यौहार मनाया। इस मौके पर नमाज ईद अदा की गई और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। ईद उल अज़हा, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, हर साल मनाए जाने वाले दो बड़े इस्लामी त्यौहारों में से एक है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान के आखिरी इम्तिहान की याद ताजा करता है कि जब खुदावंद करीम ने उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब में 180 ममालिक के लाखों आजमीन ने रुकन आजम वकूफ अरफा अदा करने के बाद मुज़दलिफा में रात गुजारी और आज मिन्ना वापस आकर जानवरों की कुर्बानी पेश की। इससे कबल हज का फरीजा अदा करने के लिए 20 लाख से ज़ायद मुसलमान कल मैदान अरफात में जमा हुए थे जहां आजमीन किराम ने तौबा व इस्तिगफार किया। इस साल भारत से 2.25 लाख के करीब मुसलमान हज का फरीजा अंजाम दे रहे हैं जिनमें से तकरीबन 1,40,000 आजमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जबकि 35,000 के करीब आजमीन प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हज का फरीजा अंजाम देने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कल ईद उल अजहा की तकरीब सईद नहायत ही तुज्को एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों को खास एहतमाम के साथ तैयार रखा गया है। दरगाह हजरतबल और वादी के दूसरे अहम मजहबी मकाम पर नमाजियों की सहूलियात के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आज ईद से एक रोज कबल बाजारों में जरूरी चीजों की खरीदारी को लेकर खासी गहमागहमी रही। लोग पिछले कई रोज से ही बच्चों के लिए नए मलबूसात और कुर्बानी के جانوروں کی خریداری میں مصروف رہے. وادی کے بازاروں میں کافی چہل پہل دیکھنے کو ملی. لوگ گوشت اور بیکری خریدنے کے لیے قطاروں میں دیکھے گئے. اسی دوران وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے سری نگر شہر کے کئی بکجات پیر دستگیر صاحب خانیار سلطان العارفین مخدوم صاحب درگاہ حضرت بل کے علاوہ چرائے شریف جا کر عید الاضحیٰ کے پیش نظر وقف بورڈ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے لوگوں کو عید کی مبارکباد دی. جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اطاعت الہی کی ایک منفرد مثال پیش کرتا ہے کہ جس کی نظیر اسلامی تاریخ میں ملنی مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قیامت تک قائم رہنے والی مثال فرزندان توحید کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان راوی، جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری، نائب صدر ظفر اقبال منہاس، سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی، پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین، پردیش بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر، بی جے پی گاندربل کے ضلع صدر محمد امین شاہ اور سینئر ٹریڈ یونین لیڈر و امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جموں کشمیر کے صدر فیاض احمد شبنم نے بھی لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر کل وادی بھر میں عید نماز کے بڑے بڑے اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوں گے. وادی میں عید نماز کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوگا، جہاں نماز عید صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. زیارت مخدوم صاحب اور زیارت نقشبند صاحب خواجہ بازار میں بھی عید نماز صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف جناب صاحب سورا، آثار شریف شہری کلاش پورہ، آثار شریف کعبہ مارک، زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار، زیارت حضرت میر سید یعقوب صاحب سنوار، آثار شریف پیٹھ مکھامہ بیروا اور زیارت حضرت سید علی علی بلکی رحمت اللہ علیہ پخر پورہ میں عید نماز صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. مسجد شریف ٹی آر سی سری نگر میں نماز عید صبح 7 بجے ادا کی جائے گی. زیارت حضرت سخی زین الدین ولی اشمقام میں نماز عید صبح 8:15 پر ادا کی جائے گی. زیارت حضرت بابا پیام الدین رشی صاحب ٹنگ مرگ اور خانقاہ فیض پناہ ترال اور مرکزی عیدگاہ ددرہما گاندربل میں نماز عید صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی. خانقاہ مولا سری نگر میں عید کی نماز صبح 11 بجے، جامع مسجد ابوبکر صدیق مین مارکیٹ وسن کنگن میں صبح 6:45 پر اور عیدگاہ چکورہ پلوامہ میں صبح 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں. قانون اور انصاف محکمے کے وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا ہے کہ اگلے مہینے جو 3 نئے فوجداری قوانین نافذ ہوں گے وہ تیزی کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقت اور ملک کے حالات کی مناسبت سے قوانین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حلقوں کی جانب سے طویل عرصے سے اس طرح کی مانگ سامنے آتی رہی ہے کہ برطانوی دور کے جابرانہ فوجداری قوانین میں ترمیم کی جانی چاہیے اور اسی کے تناظر میں 3 نئے قوانین اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے نافذ ہو جائیں گے. نئے قوانین سے عوام کو نو آبادیاتی جابرانہ فوجداری قوانین کی جگہ بر وقت تیز اور کسی طرح کی خامی کے بغیر انصاف کا حق مل جائے گا. یاد رہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پچھلے سال ان 3 قوانین کو اپنی منظوری دی تھی. 21 جون کو بین الاقوامی یوگا ڈے کے 10ویں ایڈیشن کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پاد ہستاسن یعنی ہاتھوں سے لے کر پاؤں کی پوزیشن کی ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو پاؤں تک لے جایا جاتا ہے. ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس آسن کو اپنائیں کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں. نئی دلی میں جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے دوران وزیر داخلہ نے سلامتی ایجنسیوں کو مشن موڈ پر کام کرنے کی دی ہدایت. انتظامیہ جموں کشمیر کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانے کی وعدہ بند, عوام کی آواز میں لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار خیال. ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں عید الاضحی کی تقریب سعید کل. نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے کے لیے انتظامات مکمل. اور ملک میں 3 نئے فوجداری قوانین اگلے مہینے سے ہوں گے نافذ, وزیر قانون ارجن رام میگھوال. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.